दुष्कर्म का परिणाम और उसका प्रायश्चित। पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम, दुखम शोको भयंकर है। अर्थात पाप से बीमारी पैदा होती है, पाप से वृद्धत्व आता है, पाप से ही दीनता गरीबी होती है, पाप से ही दुख होता है, शोक होता है और बड़ा भय लगता है। महापातक के स्मृति में लिखा है पांच चिन्ह, सात चिन्ह है। बालघाती च पुरुषो मृतवत्सः प्रजायते। यदि आप किसी बालक की हत्या करोगे तो आपके बच्चा होगा तो वो मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। यदि गर्भपात का पाप करोगे, गर्भपात नजार होगा, यकृत प्लीहा जलोदरा, उससे आपके यकृत प्लीहा और जलोदर का रोग होगा। प्रतिमा भंगकारी च अप्रतिष्ठ प्रजायते। यदि आपने किसी प्रतिमा को तोड़ दिया तो अप्रतिष्ठित हो जाओगे, अर्थात आपका संसार में बड़ा अपयश फैलेगा। और विद्या पुस्तक हारी च किलमूक प्रजायते। यदि आपने विद्या और पुस्तक को चुराना का काम कर लिया या उनका निरादर कर दिया तो आप गूंगे हो जाओगे। औषधस्यापहरणे सूर्यावर्त प्रजायते। और औषधियों को चुरा लिया, बैद जी की या दवाई पड़ी उठा ली, हमारे काम आ जाएगी, बेच देंगे तो औषधि को चुराएगा उसके आधा सीसी की बीमारी हो जाएगी। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है कि जो आदमी चंदे के द्रव्य को हड़प लेता है उसके गंडमाल रोग होता है, गले के अंदर भयंकर सूजन वगैरह। जो असत्य बोल करके और साक्षी देता है, नहीं साहब ये काम तो मेरे सामने हुआ, तो उसके मुख रोग होता है बड़ा भयंकर, या मुख रोग फिर दूर नहीं होता। रक्त पित्त की बीमारी होती है। दूसरों को धोखा देकर जो अभक्ष्य पदार्थ खिलाता है उसको उन्माद रोग होता है। जो किसी कन्या का शील भंग करता है वो तो मूत्रकृच्छ रोगी होता है। जो परस्त्रीगामी होता है वो अश्मरी रोगी होता है। अश्मरी पथरी, अश्मरी रोगी होता है। और अनेक प्रकार से जो व्यभिचार आदि में लगा है उसके भगंदर रोग होता है। गाय और साधु को जो जल से भी वंचित करता है उसको तृषा रोग होता है, हरदम उसको प्यास लगती रहती है। धर्मशास्त्र हमको इतना स्पष्ट बोलते हैं, पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति जंतवः। पुण्य का फल तो सब चाहते हैं लेकिन पुण्य कोई करना नहीं चाहता है। इधर न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल कोई नहीं चाहता लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः है, लेकिन पाप व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक करता है। तो इसका प्रायश्चित क्या है? तो प्रायश्चित यही है कि सबसे पहले पाप के प्रति हमारे हृदय में ग्लानी पैदा हो। प्रायः पापम बिजानीयात् चित्तम तस्यैव शोधनम्। कम से कम हम पाप को पाप तो माने। जब हम पाप को पाप मानेंगे, बुरा मानेंगे, यही उसका प्रायश्चित है, फिर वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि वो हमारे मानने से होगा। गुरुर आत्मवताम शास्ता शास्ता राजा दुरात्मना। मनुष्य का गुरु स्वयं ही खुद होता है, दूसरे गुरु की बात नहीं, अपने गुरु खुद ही होते हैं। जैसे राजा है वो दुष्ट प्रजा का शासन करने वाला होता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने आप पर अपने आप का शासन चलाना चाहिए। गुप्त रूप से किए हुए पाप पर यमराज जी की दृष्टि बराबर बनी रहती है। अतः कोई भले ही पाप छिपाए पर उनको वहां मुक्ति मिलने वाली नहीं है, दंड तो मिलेगा ही। पाप को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने दिन तक पाप छिपाया जाएगा उसका फल दिन 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 बढ़ता जाएगा। परिभाषेन प्रायश्चित्तेन्दु शेखर में आता है, आ संवत्सरम प्रायश्चित्ता करने पाप द्वैगुण्यम। अर्थात एक बरस तक यदि पाप का प्रायश्चित्त नहीं किया तो वो पाप दुगना होता है, अतः पाप का प्रायश्चित यथा समय कर लेना चाहिए। एक और ध्यान देने की बात है कि सफल प्रायश्चित वही है जिसमें दुष्कर्म के प्रति आत्मग्लानी हो जाए, जो अभी पूर्व में लिख के आए, और अंतरात्मा में सदा पश्चाताप की अग्नि जलती रहे। और साथ में यह भी याद रहना चाहिए कि बार बार पाप करो और बार बार प्रायश्चित करो, ये तो हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। उज्जैनी में नागदत्त सेठ का नाम देश विख्यात था। नागदत्त नाम का एक सेठ था उज्जैनी में, उसका बहुत नाम था। नाम के साथ दाम और व्यापार का काम भी दिनों दिन बढ़ रहा था। श्रीमानता के तीन चरण होते हैं, नाम दाम और काम की वृद्धि होने पर भी चौथे चरण धाम की कमी उन्हें बेचैन बना रही है। वैसे तो उनके रहने का मकान बहुत अच्छा था, पर उसे महल नहीं कह सकते थे। अभी अभी नगरपति ने एक सुंदर महालय बनाया था। नागदत्त सेठ उनसे किसी बात में कम थे जो एक विशाल महल न बनाए। इस कार्य के लिए उन्होंने जयपुर के ख्यातनामा शिल्पियों को बुलवाकर अच्छे से अच्छा महल बनवाया। अब केवल उसमें रंग का ही काम बाकी था। बहुत अच्छा सेठ ने मकान बनाया, अब केवल उसमें रंग का ही काम बाकी था। चित्र काम के लिए भी देश के कुशल चित्रकार बुलाए गए। रंग रोगन चित्रकारी का काम चल रहा था। प्रातःकाल का समय था, स्वयं नागदत्त सेठ चित्रकारों को सूचना दे रहे थे, चित्रकार देखना हमारे जो राजा हैं उनका महल हमारे मकान के सामने तुच्छ लगना चाहिए, ऐसी बढ़िया चित्रकला दिखाना ताकि राजा भी चकित हो जाए। चाहे जितना धन लग जाए उसकी कोई चिंता नहीं है, और चाहे सात पीढ़ियों तक रंग तथा चित्र बनते रहे ऐसा काम करना है। नागदत्त आगे बोल ही रहे थे कि उसी मार्ग से मंद मंद हंसते हुए एक मुनिराज निकले, और उनको देखकर नागदत्त ने अपनी बात पूरी किए बिना ही मुनिराज का वंदन किया कि हे महाराज आपको प्रणाम है। मुनिराज अपने हाथ से आशीर्वाद देते हुए नागदत्त की ओर मुस्कुराने लगे। तो वे मुनि बड़े ज्ञानी थे, भिक्षा लेने के लिए बाहर आए थे, अन्यथा एक ही स्थान पर बैठे जब ध्यान में मग्न रहने वाले इधर क्यों आए। और ऐसे पहुंचे वे मुनि आशीर्वाद देते देते बड़े विचित्र ढंग से हंस भी रहे थे, तो नागदत्त को आश्चर्य हुआ। मुनि के जाने के बाद सेठ अपने घर में आए। मार्ग में चलते चलते भी नागदत्त के मन में यही विचार आ रहा था कि ये मुनि महाराज हमको देखकर हंसे क्यों, और ऐसे ढंग से हंसे। एक तो स्वाभाविक मुस्कान होती है वो नहीं थी, ऐसे हंस रहे थे। संतों का हंसना तो ऐसे होता नहीं है। महल के निर्माण में शायद कोई त्रुटि रह गई होगी, चित्रकला में कोई कसर रह गई होगी, इसीलिए वे हंस रहे होंगे। इधर नागदत्त सेठ अपने घर पर पहुंच गया। इधर भोजन कराती हुई नागदत्त की पत्नी कह रही थी, मजदूर लोग अपना काम करते हैं, महल भी प्राय पूरा बन चुका है, फिर आप वहां मजदूरों के बीच में खड़े रहकर क्यों समय बिगाड़ते हो? आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं हो रही? भोजन का समय बीत जाता है तब भी आप भोजन को याद ही नहीं करते, आपको भोजन की भी याद नहीं रहती। आपकी उपस्थिति से कोई विशेष काम होता हो ऐसी बात थोड़ा ही है। नागदत्त ने कहा, अरे तुम क्यों चिंता करो, भोजन तो जीवन में रोज करते ही हैं, काम को कौन संभालेगा। अब तो नाव भी किनारे लग चुकी है, अब तो केवल रंग रोगन का ही तो काम बाकी है। तुम जानती हो आजकल के मजदूर लोग देख रेख के बिना पूरा काम नहीं करते। पत्नी चुप हो गई। थोड़ी देर बाद नागदत्त ने भोजन करते करते कहा, सातवीं मंजिल पर कलात्मक चंदन का झूला बन चुका है, सोने के कड़े भी तैयार हैं। उसी प्रकार हमारे प्यारे मुन्ने के लिए एक पलना बनाने का आर्डर भी दिया है, वह भी सोने चांदी की नक्काशी के दार बनेगा। हाँ, मैं भी गृह प्रवेश की मुहूर्त की घड़ियां गिन रही हूं, सेठ की पत्नी ने कहा। अच्छा, हमारी रसोई तो अच्छी बनी है ना? मैं तो दुविधा में पड़ गया हूं। क्यों? ये पूरियां, ये कचौरी, ये पकोड़ी, ये स्वादिष्ट श्रीखंड, इनकी पहले प्रशंसा करूं या गुलाब के फूल जैसे अपने मुन्ने की प्रशंसा करूं? आप भोजन कर रहे हैं और ये तो देख रहे हैं, या ये देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब मुन्ने को सेठ की गोद में देती हुई पत्नी बोली, तो लो, इतना प्यारा लगता है तो इसको भी थोड़ा सा ग्रास खिलाओ ना। सेठ ने 2 वर्ष के मुन्ने को गोद में बैठाया और खीर पूरी का छोटा सा ग्रास उस नन्हे मुन्ने को खिलाना। संयोगवश उसी समय बच्चे ने वहां पेशाब कर दिया। बच्चा है वो, और वो पेशाब उनकी थाली में चला गया। अब वो सेठ कहने लो, संभालो इस लाला को। पत्नी को गोद में बच्चे को रखते हुए सेठ ने कहा, इसने तो मेरी थाली में पेशाब कर दिया, तो क्या हुआ? बच्चा ही तो है, बच्चे तो ऐसे ही पेशाब करते रहते हैं, इसमें समझ थोड़ा ही है। बस बात अधूरी रह गई। इतने में ही वही आ गए महाराज, वही महात्मा जी, भिक्षाम देही। सेठ ने भोजन करते करते उन महात्मा जी को वंदना दी, प्रणाम किया, और वे मुनिराज हंसते हंसते, वैसी हंसी, वही हंसी। पत्नी उठकर मुनिराज को भिक्षा दी और मुनिराज चले गए। भोजन करने के बाद सेठ पान सुपारी खाते विचार करने लगे, ऐसे ज्ञानी यो महात्मा होते हैं, देखो ऐसे बिना कारण नहीं हंसते हैं, ऐसा हंसना संभव नहीं है, एकांत में जाकर इस हंसी का कारण पूछना चाहिए। भोजन के बाद सेठ बिस्तर पर लेटे, परंतु मन उधर ही जा रहा था कि आज महात्मा फिर भी वैसे ही हंस रहे थे, नींद नहीं आई। सायंकाल का समय हुआ, 4 बज गए। 2-1 दिन से सेठ दुकान पर नहीं गए। बंगले का काम जो चल रहा था, थोड़ी देर के लिए उन्होंने दुकान जाने का मन बनाया। सेठ नागदत्त की दुकान बाजार के अंदर थी। मुनीम लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सेठ गद्दी पर बैठ करके हिसाब किताब देख रहे थे। उसी समय एक हट्टा कट्टा बकरा दुकान पर चढ़ाया। उसके पीछे दौड़ता हुआ एक कसाई भी आ गया। कसाई और बकरा दोनों एक साथ ही सेठ के वहां दुकान पर चढ़ गए। सेठ की दृष्टि पड़ी। बकरा सेठ के सामने कुछ आशा भरी दृष्टि से देख रहा था, मानो वो मूक भाव से प्रार्थना कर रहा था, हे सेठ, इस कसाई से मुझे छुड़ाओ। सेठ ने कसाई से कहा, एक कसाई, बकरे को छोड़ दो, मैं तुमको 1 मोहर इनाम में दूंगा। कसाई बोला, सेठ साहब, जैसे आप व्यापारी हैं वैसे मैं भी बकरे का व्यापारी हूं, मुझे बकरे की कीमत 5 मुद्रा प्राप्त हो सकती है, आप 1 मुद्रा में इसको छुड़ाना चाहते हो? ये बकरा मैं लेके जाऊंगा। नागदत्त सेठ 5 मुद्रा स्वीकार कर लेते तो बकरा अवश्य छूट सकता था। सेठ ने एक दृष्टि से बकरे की ओर देखा, बकरा थर थर कांप रहा था, उसका हृदय मानो पुकार रहा था कि सेठ, इतना धन तुम्हारे पास पड़ा है, 5 मोहर से यदि मेरा जीवन बचता है तो छुड़ा लो, हे सेठ, छुड़ा लो। परंतु दूसरी ओर सेठ का लालची मन वो पांच मुद्रा देने के लिए साफ इनकार कर रहा था। वो सोचा पांच मुद्रा, ओ हो कसाई को, अरे पांच मुद्रा देने पर भी क्या कसाई हिंसा का कार्य छोड़ेगा थोड़ा ही। अतः बकरे को वापिस देकर अपने तो पांच मुद्राएं बचा लेनी चाहिए। कह रहा ले जाते रहे इस बकरे, लेना तो एक मुद्रा ले ले, नहीं तो ले जाते रहे बकरे को। दुकान के सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, अतः स्वयं सेठ ने खड़े होकर बकरे का कान पकड़कर उस कसाई को सौंप दिया और कहा ले जा अपना ये माल, पांच मुद्रा मुफ्त में नहीं आती है, इसके लिए तो पसीना पसीना। इतना बोला, इतने में ही दुकान के नजदीक से वे ही मुनिराज वे ही महात्मा आ गए और मुनिराज को देखकर नागदत्त सेठ ने प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया और वही हंसी आई। अब तो नागदत्त से रहा नहीं गया, दुकान से नीचे उतर कर बड़े श्रद्धा से प्रणाम करते हुए कहा मुनिराज आज मुझे आपको इस प्रकार से हंसते हुए तीन चार दिन हो गए देखते, जब भी आप मिलते हैं इसी प्रकार से आप दर्शन देते हुए हंसते हैं। मंद हास्य अलग होता है, मुस्कुराहट एक अलग होती है, लेकिन आपके जो देखने का और हंसने का तरीका है इसमें मुझे बहुत बड़ा रहस्य मालूम देता है। बताइए इसका रहस्य क्या है, मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? नागदत्त ऐसी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी, भगवान की तरफ चलने वाले पथिकों के लिए ये बात उचित नहीं है। ऐसी बातें जानबूझकर अपने आप ही पैदा होती हैं। मैं अपने आप ही हंस रहा हूं, तुम दुख क्यों करते हो? मुझे दुख नहीं होगा महाराज, नहीं मैं कुछ बात आगे कहूंगा तो तुम्हें बहुत दुख हो जाएगा। नहीं महाराज, विश्वास दिलाता हूं मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं आपके हंसने का कारण जानना चाहता हूं। कोई न कोई छिपा हुआ रहस्य है, आप इस रहस्य को निसंकोच क्यों नहीं कहते हैं? मुनिराज बोले मैं यहां नहीं कहूंगा, आज सायंकाल क्षिप्रा नदी के किनारे आओ, उज्जैनी में रहते थे, क्षिप्रा नदी के किनारे आओ, एकांत में आओ, एकांत से बात करेंगे। मुनिराज वही हंसी और वही मुस्क वही हंसी वो उसी हंसी चले गए। सायंकाल का समय, उज्जैनी के हर मंदिर के अंदर घंटानाद हो रहा है, आरतियां हो रही है और बड़ी गूंजे हो रही है, ढोल नगारे बज रहे हैं, पर नागदत्त के मन के अंदर तो और ही नगारे बज रहे थे। आखिर उस मुनि के हंसने का कारण क्या है? तो नागदत्त वहां पहुंचे, नदी के किनारे उन संतों के पास में गए और प्रणाम किया। महाराज मैं चित्रकार को सूचना दे रहा था कि तुम ऐसा चित्र बनाओ वैसा चित्र बनाओ, आप बहुत विलक्षण ढंग से हंसे, क्या कारण था? हाँ, चित्रकार को आप जिन शब्दों में सूचना दे रहे थे किन शब्दों में बोल रहे थे याद है आपको? हाँ हाँ, मैं चित्रकार से ऐसा बोल रहा था कि चित्र ऐसा बनाना ऐसा काम करो तो सात पीढ़ी तक नष्ट भी ना हो, ऐसा कैसा चमकता रहे, ये बोल रहा था। सुनो नागदत्त, सात पीढ़ी पर्यंत रंग तथा चित्रकारी को अमिट रखने की इच्छा रखने वाले को यह भी पता नहीं है कि तुम्हारा जीवन सात दिन में ही पूरा होने वाला है। ये स्पष्ट कथन नागदत्त के कान में जब गए वो तो एकदम बेसुध हो गया, आंखें छलकने लगी, शरीर थर थर कांपने लगा, कंपित स्वर से कहा महाराज क्या मैं सात दिन में, यदि ऐसी भावी है तो बताओ महाराज मेरी मृत्यु किस रोग से होने वाली है? महात्मा जी बोले मृत्यु रूप रोग से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। जिसका जन्म और मरण किसी के वश में नहीं है, उस कर्म के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बोलो, ऐसे कर्माधीन देह को तुम नित्य मानकर मिट्टी पत्थर चूने से बने हुए मकान का रंग 7 पीढ़ी तक बने रहने की आशा रखते हो, तो फिर हम हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ये हंसी की बात नहीं है। अच्छा महाराज, ये तो बात मेरे दिमाग में बैठ गई, पर भिक्षा के समय आप आए थे, बड़ा इधर तो स्त्री भोजन करा रहे थे, इधर पुत्र मेरी गोद के अंदर बैठा हुआ भोजन ले रहा था, आप भिक्षा के समय आए और हंसे, उसके हंसी का कारण क्या है? देखो भाई, ये बात तो सुनने लायक नहीं है और न सुनाने लायक है। कहा कि महाराज क्यों नहीं कहना, अब आपके सामने जब मैं इतनी बात कह रहा हूं तो आपको सुनाना चाहिए। अच्छी बात है, तुम्हारे आग्रह से और तुम्हारे कल्याण के लिए मैं तुमको सुनाता हूं। देखो, जिस बालक को तुम प्यारा मुन्ना मानकर गले लगाते हो और आज जिसके मूत्र के छींटे लग जाने पर तुम उस भोजन को प्रेम से खा लेते हो, वही तुम्हारा प्यारा पुत्र पूर्व जन्म में, लिखा है वो बोल देते हैं भाई, वही पुत्र तुम्हारा पूर्व जन्म में तुम्हारी पत्नी का जार पति था, जिसका अपनी पत्नी के साथ एकांत में देखकर तुमने इसी को मारा था, और मृत्यु के बाद वही जीवात्मा तुम्हारी पत्नी के उदर से जन्म पाकर तुम्हारा अनिष्ट करने आया है। तुम्हारी मृत्यु के बाद वह महादुराचारी महादुर्व्यसनी बनेगा और तुम्हारे उस महल, तुम्हारी उस दुकान, तुम्हारी वो प्रतिष्ठा, वो मिट्टी में मिलाकर स्वाहा कर देने वाला होगा। जिस महल का रंग तुम 7 पीढ़ी तक कायम रखना चाहते हो, तुम्हारा वही पुत्र तुम्हारी 7 पीढ़ी की सारी प्रतिष्ठा को डुबो देगा। बस इसी विचार से मुझे बार बार हंसी आई थी। अब तो नागदत्त के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वो बोले, महाराज मैं तो चारों ओर से लुट गया हूं, मुझे कुछ होश ही नहीं था, बस एक प्रश्न और बाकी है। दुकान के समीप से निकलते हुए आपने तीसरी बार क्यों हंसा? मुनिराज बोले, क्या एक एक हंसी के बारे में सुनोगे? नागदत्त ने कहा, महाराज जब इतनी बात बता दी है तो ये एक कहने में क्या बड़ी बात है, तो ये भी सुन लो। जिस बकरे को तुमने 5 मुद्रा के बचाने के लोभ से कसाई के हाथ सौंप दिया था, ये बकरा तुम्हारे पिताजी थे, और वह कसाई पूर्व जन्म में एक गरीब किसान था। उसके माल में कम पैसे देकर तुम्हारे पिता ने उसका अपराध किया था, अतः उस पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए उसी किसान के हाथ से उसे मरना पड़ा। महात्मा जी बोलते बोलते रुक गए, नागदत्त यूं चक्कर खाने लग गया। महात्मा जी ने कहा, देख नागदत्त, घबराने की बात नहीं है, ये संसार ऋणानुबंध है, आपस में ऋण से बंधे हुए हैं। मोहांध मानव अपने ही दोष से इस जंजाल में फंसा रहता है, ये काल देव की माया है। संसार सिंधु रूपश्च मीन रूपाश्च मानवाः, जंजालो जाल रूपश्च काल रूपश्च धीवर है। ये संसार सागर के समान है और नागदत्त इसमें जितने मनुष्य हैं सब मछली के समान हैं, और ये जाल रूप जितना जंजाल है संसार के काम धंधे, ये जाल है और काल है वो इसका धीवर है, वो मछली पकड़ने वाले के समान है। अहंता ममता का जाल बिछाकर इसमें तुम फंस गए, क्या करने चले हो? नागदत्त ने उस महात्मा को प्रणाम किया, कहा कि महाराज मेरी आंखें खोल दी, मुझे पता नहीं था कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, अब मैं अपनी मृत्यु को ही सुधारने में लगूं।